ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयामुदीरये नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेव्या भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवते नैषे कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। चर्चा करेंगे श्रीमद् भागवतम स्कंद 5 अध्याय 11 श्लोक संख्या नंबर 7। तावान्यं व्यवहार सदवी क्षेत्रज्ञ साक्ष्य भवति स्थूल सूक्ष्मा तस्मात् मनोलिंगम दो वदन्ति गुण गुणत्वस्य प्रावृत्स्य तावान्यं व्यवहार सदा वी क्षेत्रज्ञ साक्ष्य भवति स्थूल सूक्ष्मा तस्मात् मनोलिंगम अधो वदन्ति गुण अगुणत्वस्य प्रावृत्स्य तावान्यं व्यवहार सदा वी क्षेत्रज्ञ साक्ष्य भवति स्थूल सूक्ष्मा तस्मात् मनोलिंगम दो वदन्ति गुण अगुणत्वस्य प्रावृत्स्य। शब्दार्थ तावान उस समय तक अयम ये है व्यवहार कृत्रिम उपाधियां मोटा दुबला देव या मानवीय सदा सदैव आभि प्रकट करते हुए क्षेत्रज्ञ जीवात्मा का साक्ष्य प्रमाण भवती है स्थूल सूक्ष्म मोटा तथा दुबला तस्मात् अतः मन मन लिंगम कारण अधा ये वदन्ति कहते हैं गुण अगुण तवस्य गुणों अथवा अगुणों का परवरस्य तथा जीवन की उच्च और निम्न दशाएं। इस श्लोक का हिंदी अनुवाद हिज्वाइन ग्रेस जगत गुरु श्री प्रपाद जी द्वारा। मन जीवात्मा को इस संसार में विभिन्न योनियों में फिरता रहता है जिससे जीवात्मा को मनुष्य देवताओं स्थूल कृष मनुष्यों इत्यादि विविध रूपों का लौकिक अनुभव होता है। विद्वानों का कथन है कि देह का रूपायन बंधन तथा मुक्ति का कारण मन ही है। हरे कृष्णा। मेरे पीछे बोलिएगा मन जीवात्मा को इस संसार में विभिन्न योनियों में फिरता रहता है, जिससे जीवात्मा को मनुष्यों, देवताओं, स्थूल कृश, मनुष्यों इत्यादि विविध रूपों का लौकिक अनुभव होता है। विद्वानों का कथन है कि देह का रूपायन बंधन तथा मुक्ति का कारण मन ही है। हरे कृष्णा। तात्पर्य जगतगुरु शील प्रपात जी द्वारा सरल है, स्पष्ट है, सिर्फ आपको ध्यान से सुनने की आवश्यकता है। हरे कृष्णा। जिस प्रकार मन बंधन का कारण बनता है, उसी प्रकार मुक्ति का भी कारण स्वरूप सही बन सकता है। मन को यहां पर प्र अवर कहा गया है। पर का अर्थ है दिव्य तथा अवर का अर्थ भौतिक है। जब मन ईश्वर की सेवा में अनुरक्त रहता है, सव मना कृष्ण पदारविंदियो, तो इसे पर अर्थात दिव्य कहते हैं। किंतु जब ये इंद्रिय तृप्ति में व्यस्त रहता है तो इसे अवर या भौतिक कहते हैं। इस समय बद्ध अवस्था में हमारा मन पूर्णतः इंद्रिय तृप्ति में लगा हुआ है, किंतु भक्ति के द्वारा उसे शुद्ध करके आदि कृष्ण भावना अमृत में लाया जा सकता है। हमने प्रायः अम्बरीश महाराज का दृष्टांत दिया है, सवा मना कृष्ण पदारविंदो व चांसी वैकुंठे गुणानुवर्णने। कृष्ण भावना अमृत में मन पर नियंत्रण आवश्यक है। जीव का उपयोग भगवान कृष्ण के संदेश को प्रसारित करने और ईश्वर का गुणगान करने अथवा कृष्ण का प्रसाद प्राप्त करने में किया जा सकता है। सेवन मुखो ही जीवादो। जब मनुष्य जीव का उपयोग ईश्वर की सेवा में करता है तो अन्य इंद्रियां शुद्ध हो सकती हैं। जैसा कि नारद पंचरात्र में कहा गया है, सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम। मन तथा इंद्रियों के शुद्ध हो जाने पर मनुष्य का संपूर्ण अस्तित्व शुद्ध हो जाता है तथा उसकी सारी उपाधियां शुद्ध हो जाती हैं। तब मनुष्य अपने को मनुष्य, देवता, कुत्ता, बिल्ली, हिंदू, मुसलमान इत्यादि कुछ भी नहीं मानता। मन तथा इंद्रियों के शुद्ध होने और कृष्ण की सेवा में पूर्णतः अर्पित होने पर मुक्ति मिल सकती है और मनुष्य भगवान के धाम को वापस जा सकता है। हरे कृष्णा। ओम अज्ञानति मंदस्य ज्ञानांजन शलाके चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदामयं ददाति सर्वदा। नमोऽहं विष्णुपदाय कृष्णवशाय भूतले श्रीमद्भक्ति वेदांत स्वामिनीति नाम नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रसारणे निर्विशेषा शून्यवादी पाचादेश वांछा कल्पतु भयश्च कृपा सिंधु भयश्च पतित नाम भावने भयो वैष्णव्यो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। जगद्गुरु श्रील प्रभाद की ग्रंथराशि भागवतम की अभी आपने श्लोक सुना, बोला, पढ़ा भी। कृपा जी का तात्पर्य भी आपने पढ़ा भी, सुना भी। सब शुरू करने से पहले एक बात पूछना चाहता हूँ कि कृपा जी ने अपने तात्पर्य में ऐसी कौन सी बात विशेष रूप से कही जो विशेष रूप से उल्लेखनीय है इस तात्पर्य में, कोई बताएगा? और
मन ही मुक्ति का साधन बन सकता है, मन ही बंधन का कारण।
और
जब हम कृष्ण भगवान की भक्ति करता है या उसमें लगा रहता है तो पर है, अगर भौतिक सुख भी अगर हमारा मन आता है तो उसमें लगाए तो नहीं।
इसमें एक विशेष बात बोली गई, ये तो अनुवाद में बोला गया जो आप सभी ने बोला, एक इंद्रियों को शुद्ध करना, और विशेष रूप से प्रभुपाद जी ने जीवा के ऊपर विशेष बल दिया। अपने तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी ने जीवा के ऊपर विशेष बल दिया। मन भक्ति में लगा है तो आपका मित्र है, संसार में लगा है तो आपका सबसे बड़ा शत्रु है। और प्रभुपाद जी बोलते हैं कि इंद्रियों को शुद्ध करना, और यहां पर जीवा की बात विशेष रूप से बोली गई। श्रील प्रभुपाद जी के एक शिष्य थे, प्रभुपाद जी के पास आए। प्रभुपाद जी, क्या करूं, मैं अपनी जीवा के ऊपर नियंत्रण नहीं रख पाता हूं, जीवा मेरी हर समय कुछ खाने की इच्छा करती रहती है। तो प्रभुपाद जी ने इस बात को स्वीकार किया कि इसमें कोई शक नहीं है कि जीवा को कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल कार्य है। और उस समय श्रील प्रभुपाद जी ने अपना एक उदाहरण देते हुए बताया कि जब दूसरा विश्व युद्ध शुरू हुआ तो प्रभुपाद जी उस समय कलकत्ता में थे, शादी उनकी हो चुकी थी और लगातार बमबारी का खतरा बना हुआ रहता था कोलकाता में। तो श्रील प्रभुपाद जी कहीं बाहर गए हुए थे तो अपने घर आए तो उनके एक मित्र बड़ी तेजी से बाहर से आए और श्रील प्रभुपाद जी से बोले कि भाई खतरे का सायरन बज गया है, फटाफट जितनी जल्दी हो सकता है अपने सुरक्षित स्थानों पर चले जाओ। तो श्रील प्रभुपाद जी अपने उस मित्र से बोले, भाई मैं अभी बाहर से थका हुआ आया हूं और मैंने देखा है कि मेरी पत्नी ने कचोरियां बना के रखी हुई है और मैं कचोरियों को खाए बिना मैं यहां से नहीं जा सकता। वो मित्र चला गया, श्रील प्रभुपाद जी ने कचोरियां खाई और उसके बाद हरे कृष्णा महामंत्र का जप किया और अपने उस शिष्य से बोले ये बात सुनाते हुए कि मैं भी अपनी जीवा पर कंट्रोल नहीं रख पाता था, मेरे को भी लगा कि पहले खा लूं फिर खतरे की बात बाद में देखूंगा, लेकिन मेरी इसमें सहायता किसने किया इस जीवा को कंट्रोल करने में, हरे कृष्ण महामंत्र। श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं आपको कुछ भी कंट्रोल करने की आवश्यकता नहीं है, आप सिर्फ हरे कृष्ण महामंत्र को अपने जीवन में संजीदगी से सीरियसली और सिंसियरली इसे अपने जीवन में ऐड कर लीजिए, बाकी सब कुछ अपने आप कंट्रोल होता चला जाएगा। सेवन मुखो ही जीवा दो, भगवान की सबसे पहली और सबसे बड़ी सेवा जीवा से हो जाती है। सबसे पहली और सबसे बड़ी सेवा भगवान की जीवा से। भगवान को आपसे कुछ नहीं चाहिए, वो तो आपको देते हैं लगातार देते हैं। उसकी सेवा करनी है भगवान की तो जीवा का इस्तेमाल। प्रभुपाद जी बोलते थे कि जीवा दो काम करती है, खाने का एक बोलने का। अभी तात्पर्य में उन्होंने लिखा, जीव का उपयोग भगवान कृष्ण के संदेश को प्रसारित करने, ईश्वर का गुणगान करने और कृष्ण का प्रसाद ग्रहण करने के लिए किया जाना चाहिए। आपने उस शिष्य को श्रील प्रभुपाद जी बोले कि अगर किसी व्यक्ति ने अपनी जीवा के ऊपर कंट्रोल कर लिया तो समझ लीजिए कि उसने 80% अपनी इंद्रियों के ऊपर काबू पा लिया है, 80%, फिर तो 20% का काम रह जाता है। और इसके लिए आपके पास एक सबसे उत्तम साधन है, हरे कृष्ण महामंत्र। एक बात समझ लीजिए, आपकी इंद्रियां, दो ही रास्ते हैं आपके पास, एक सत्य का एक असत्य का। अगर आप सत्य की सेवा में नहीं लगे तो ये पूछने की जरूरत नहीं आपसे कि आप फिर किसकी सेवा कर रहे हो, आप असत्य की सेवा में। और असत्य की सेवा करके आज तक किसी को कुछ प्राप्त नहीं हुआ, किसी को भी। खून पसीना एक बहा दीजिए, कर दीजिए असत्य की सेवा में, लेकिन परिणाम आपको सिफर मिलेगा, जीरो मिलेगा। अपनी इंद्रियों को संसार की सेवा में लगा दीजिए और या भगवान की सेवा में। मैं ऐसे ही एक जगह कथा कर रहा था तो मेरे सामने एक माता जी बैठे हुए थे और रोने लग गए कथा सुनते हुए। मैंने पूछा, माता जी ऐसी कौन सी बात हो गई है? तो मेरे पूछने पे और जोर जोर से रोने लग गए। माता जी ऐसी क्या बात हुई है? प्रभु जी आप जो बोलते हो सत्य बोलते हो, आपने जो बताया एकदम सही है। आज मेरी अपने पुत्रों के साथ सुबह सुबह घर में लड़ाई हो गई और माता ही ने बताना शुरू किया। मेरे दो बेटे हैं, दोनों बड़े बेटे हैं, और दो बेटे बड़े हैं और शादीशुदा है। बहुओं के सामने मेरी अपने बेटों के साथ लड़ाई हो गई और मैंने अपने बड़े बेटे को बोला कि मैंने तेरे को इसलिए जन्म दिया था कि तू बड़ा होकर मेरी बेइज्जती करेगा। मैंने इसलिए तेरे को पाल पोस के बड़ा किया, इसलिए तेरे को जन्म दिया था कि तू बड़ा होकर मेरी बेइज्जती करेगा। तो आगे मेरे बेटे ने क्या जवाब दिया, वो माता ने बताया कि मेरा बेटा मेरे से बोला, कोई पैदा किया था तो कोई एहसान नहीं किया था, अपने मजे के लिए तूने मेरे को पैदा किया था। एक माता को उसका पुत्र जो शब्द बोल दे, उस माता का मरना वैसे ही हो जाता है। और वो माता, कोई भी माता अपने बच्चे को जन्म देती है, पालती है, उसके लिए दुख उठाती है, उसको सूखे में सुलाती है, आप गीले में सुलाती है। सब कुछ सहन करती है लेकिन बदले में उसे क्या मिला? ये एक उस माता की बात नहीं है, इस संसार की बात है। पंजाबी में एक बड़ी सुंदर कहावत है, कोठे चढ़ के देखिया घर घर बल्दी आकर, हर घर का ये हाल। तो क्या बच्चे को पालना, उसको बड़ा करना छोड़ दे माता? नहीं। अंतर कहां पे रहता है? भगवान बोलते हैं यत करोसी तत् कुरुष्व मदर्पणम्, तो जो कुछ भी करता है मेरे को अर्पित कर। गलती कहां पर होती है हम लोगों से? हम संसारी लोग हैं, घर गृहस्थी में फंसे हैं, उसे अपना पाल के मानते हैं, भगवान का दियो हुआ नहीं मानते। और भगवान बोलते हैं यत करोसी तत गुरुशुवा मद अर्पणम, जो कुछ तू करता है मेरे को अर्पित कर। भगवान का दिया हुआ है ये संतान, भगवान की दी है, मेरी भगवान ने सेवा लगाई है इस संतान को पालने की, मैंने इस सेवा को करना है। लेकिन ये भाव नहीं होता है संतान को पैदा करने के बाद, ये भाव नहीं आता। अपनी इंद्रियों को संसार में किस कदर तक लगा के बैठे हैं कि बच्चा थोड़ी देर के लिए स्कूल से लेट हो जाए तो माता पिता रो रो के बुरा हाल कर देते हैं, 20 जगह फोन कर देते हैं पता करो बच्चा नहीं आया। लेकिन उस परम पिता परमात्मा से बिछड़े जन्म जन्मांतर हो गए, लेकिन आज तक उसके लिए आंख से कान सुने निकले, नैनम गल श्रुधारया पतनम गदगद रुदय, पढ़ते हैं। वो दिन कब आएगा जब आपके लिए मेरी आंख से कान सु निकलेगा? लेकिन जब पढ़ने तक है, इंप्लीमेंट करने तक नहीं है, इसे जीवन में धारण नहीं कभी करते। श्रील प्रभुपाद जी जब विदेश से आए अपने शिष्यों के साथ, इंग्लिश डिवोटीज उनके, अपने शिष्यों के साथ उनका जगह जगह उनको स्वागत होता और रोजाना कभी किसी के घर में, कभी किसी के घर में भोज के लिए उनको आमंत्रित किया जाता है। और शिला प्रपात जी अपने शिष्यों को भी साथ लेके जाते हैं। ऐसे ही शिला प्रपात जी अपने शिष्यों को साथ लेकर किसी के घर में भोज के लिए गए, खाना पीना हो गया, खा लिया पी लिया, प्रपात जी बैठे हुए हैं तो जिस घर में गए थे उस घर के मालिक ने अपने सबसे बड़े बेटे को बुलाया, प्रभुपाद जी के आगे उसकी बहू को बुलाया और प्रभुपाद जी के आगे आके प्रणाम करो प्रभुपाद जी, उसने प्रणाम किया, बहू ने प्रणाम किया, स्वामी जी ये मेरा सबसे बड़ा बेटा है, ये मेरी सबसे बड़ी बहू है। दूसरे बेटे को बुलाया, स्वामी ये मेरा मंजिला बेटा है, ये मेरी मंजिली बहू है। छोटे बेटे को बुलाया, जी मेरा छोटा बेटा है, जी मेरी छोटी बहू है, ये मेरी बेटी है, जी मेरा दामाद है, ये मेरा नाती है, जी मेरा पोता है, जी मेरा ये है, जी मेरा वो है। सब कुछ मिलाने के बाद वो अपने अपने कामों में व्यस्त हो गए। प्रभुपाद जी अपने शिष्यों के साथ बैठे क्या बात करते हैं, अपने शिष्यों से क्या बात करते हैं? ये मेरा गृह मेधी परिवार है, ये मेरा गृह मेधी परिवार है। हरे कृष्णा की माला करते हुए तो दुनिया दिखती है, लेकिन वास्तव में उस तक पहुंचने वाला कौन है? प्रभुपाद जी ने लिखा अपने, उनकी बायोग्राफी में वर्णन आता है कि मेरे इस हरे कृष्णा मूवमेंट को शुरू करने से अगर एक भी व्यक्ति शुद्ध भक्त बन गया तो मेरी मूवमेंट सफल है। अब क्या बोलते हैं कि एक भी व्यक्ति अगर शुद्ध भक्त बन गया, वही प्रभुपाद जी ने भगवत गीता के 7वें अध्याय के एक तात्पर्य में लिखा है कि 99.9% प्रभुपाद जी लिखते हैं 99.9% लोग दिखावे की भक्ति करते हैं और ये गलत नहीं। हम सब दिखावे में आते हैं, ऐसी बात नहीं होती तो भगवत गीता गलत हो जाती। मनुष्य नाम शास्त्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये यत ताम अपि सिद्धा नाम कश्चन मामेति तत्त्वतः। भगवान बोलते हैं लाखों हजारों में कोई एक विरला आएगा मेरी तरफ, और उन विरलों में से कोई एक विरला मेरे तक पहुंच पाए। कहां रह जाएंगे सब लोग? माला लेके तो सभी घूमते हैं, हरे कृष्णा हरे कृष्णा करते हैं, लेकिन कहां रह जाएंगे? इसी जीव के स्वाद में, इसी संसार में फंसे। प्रभुपाद जी के जीवन को पढ़ने मात्र से ही इतना उत्साह मिलता है। प्रभुपाद जी दिल्ली में एक पंडाल प्रोग्राम कर रहे हैं, और पंडाल प्रोग्राम जैसे समाप्त हुआ और प्रभुपाद जी मंच से नीचे उतरे, तो उनके चरणों को छूने के लिए, उनके चरणों की रज लेने के लिए दुनिया उनकी तरफ, पागलों की तरफ दौड़ पड़ी। अब धक्का मुक्की नहीं हो जाए तो उनके जो डिसिपल्स थे, उनके जो शिष्य थे, उन्होंने प्रभुपाद जी के इर्द गिर्द हाथ पकड़ते हुए एक घेरा बना दिया, गोल घेरा, कि प्रभुपाद जी को आसानी से जहां से बाहर लेके जा सके। अब प्रभुपाद जी इतनी भारी भीड़ में बाहर निकल रहे हैं, उनके शिष्यों ने एक पूरा घेरा बना के रखा हुआ है, और शिला प्रभुपाद जी ने अपने एक शिष्य से उस समय इंग्लिश डिवोटी कीर्तनानंद से शायद उसमें नाम पूछा, अपने शिष्य से पूछा, आपको मालूम है ये लोग मेरे पास इतना मेरे को प्यार, इतना मेरे को ये स्नेह, ये मेरा इतना मान कर रहे हैं, सम्मान कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, किस लिए? तो उनके शिष्य निरुत्तर थे, कोई जवाब नहीं दिया। तो प्रभुपाद जी स्वयं भी बोले, क्योंकि मैंने अपनी इंद्रियों पर काबू पाने के लिए एक सिंसियर प्रयास किया हुआ है। और उसी प्रयास के सदके ये सारा कुछ हो गया। इंद्रियों को कहीं भी लगा लीजिए, आपके अपने ऊपर है। सोना किसे नहीं अच्छा लगता है? सुबह कौन 4:30 बजे उठना चाहता है? कौन अपनी नींद खराब करनी चाहता है? लेकिन वही नींद खराब करेगा जिसको रस आना शुरू। शिला प्रभुपाद जी अपने जीवन से सिखाए कि इंद्रियों के पीछे भागोगे तो बहुत मार पड़ेगी, और हम सब खा रहे हैं ये मार। अभी मैंने आपको एक माता का दृष्टांत बताया तो पता चलता है कि इस संसार में कितनी मार पड़ती है। लेकिन समस्या क्या है कि मार खाते चले जा रहे हैं लेकिन अपने आप को सुधारने के लिए तैयार नहीं। अपने आप को सुधारना नहीं चाहते, अपने इंद्रियों को कंट्रोल नहीं करना चाहते। ऐसे जीवन चल रहा है, बढ़िया ठीक है, वैसे इसे ज्यादा नहीं। गृहमेदी परिवार किसे बोलते हैं? एक जेब में भगवान आ जाए और एक जेब में संसार भी बना रहे, और दोनों चीजें साथ में नहीं चल सकती। दोनों चीजें साथ नहीं चल सकती। ग्रह वेदी परिवार की परिभाषा पूछा गया शिला प्रपात जी से, ये स्वामी जी ये काम कामना जीवन में कभी खत्म भी होती है? एक व्यक्ति ने पूछा शिला प्रपात से, कभी खत्म होंगी कामना? ये कभी खत्म हो सकती है? तो शिला प्रपात जी ने जवाब दिया कि जीवन की आखिरी सांस तक ये काम आपके अंदर से खत्म नहीं हो सकता। अनटिल अनलेस आप इसके लिए प्रयास। और शिला प्रपात जी ने अपने शिष्यों को उसके बाद एक छोटी सी दृष्टांत भी बताया, किसका था? अकबर बीरबल का। उनके शिष्यों को लिखी हुई एक वार्ता में ये आता वर्णन कि बादशाह अकबर से भी बीरबल ने यही पूछा कि काम वासना क्या जीवन के किसी क्षण आपके खत्म हो सकती है? तो बीरबल ने जवाब दिया कि नहीं, आखिरी सांस तक जीवन की एक काम वासना आपके अंदर से नहीं जा सकती। तो अकबर ने कहा इसे प्रूव करके दिखा, इसे प्रूव कर, समय आने पे मैं आपको इसका जवाब दूंगा। और कुछ दिनों के बाद वही बीरबल अपने सुबह सुबह बादशाह के पास गया, अकबर के पास, और बोलने लगा कि आप जितनी जल्दी हो सके तैयार हो जाइए और साथ में आप अपनी बेटी को भी तैयार कर लीजिए, कहीं चलना है, आपकी किसी क्वेरी का जवाब देना है जो आपने मुझसे ली है। अकबर बादशाह जानता था कि ये बीरबल एक जिम्मेवार व्यक्ति है, कोई गलत बात नहीं करेगा। उसने अपनी बेटी को भी तैयार किया, स्वयं भी तैयार हुआ और बीरबल के पीछे पीछे चल पड़ा। बीरबल अकबर बादशाह को लेता हुआ एक गली मोहल्ले में पहुंचा और एक घर में पहुंचा, और घर में अंदर दाखिल होने से पहले बीरबल ने अकबर बादशाह को कहा कि अंदर हम जिसके पास जा रहे हैं वो व्यक्ति एक बूढ़ा व्यक्ति है और कुछ पलों का मेहमान है, मरने वाला है, और आपने सिर्फ इतना ही करना है कि उस बूढ़े व्यक्ति की रीडिंग करनी है आपने कि वो क्या कर रहा है। सबसे पहले अकबर अंदर गया उस कमरे में, उसने बूढ़े व्यक्ति ने सरसरी नजर मारी, मरने वाला था, ऐसे देखकर मुंह घुमा लिया। बीरबल अंदर गया, उसने भी सरसरी नजर से उसको देखा, और फिर अकबर की बेटी, जवान बेटी, उस कमरे में प्रवेश किया तो बूढ़ा व्यक्ति जो मरने वाला था उसको एक टक एक नजर से देखना शुरू कर दिया। उसकी नजरें नहीं हटी उससे। तो प्रपात जी बोले जीवन की आखिरी सांस तक अंदर से ये काम वासना समाप्त नहीं हो सकती, और इसे समाप्त करना है तो एक ही रास्ता है आपके पास, और वो कौन सा? हरे कृष्णा 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 हरे हरे। इस महामंत्र को संजीदगी के साथ अपने जीवन में शामिल कर लेना। विधि क्या है? बोला और सुना, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। इसी मंत्र को अपनी जीवा से बोला और अपनी जीवा के बोले हुए शब्दों को अपने कानों से सुना। एक एक शब्द शिला प्रपात जी लिखे हैं अपने उसमें, कि आपके जीवन में समस्याएं खत्म नहीं हो रही हरे कृष्णा महामंत्र करते हुए, करने के बाद हरे कृष्णा महामंत्र का जपा करने के बाद भी अगर आपके जीवन में समस्याएं ज्यों की त्यों बनी हुई है, इसका मतलब है कि आपके सुनने और बोलने में कहीं कमी चलती जा रही है। चाहते हैं कि जीवन की समस्याएं समाप्त हो जाए तो इस महामंत्र को संजीदगी से अपने जीवन में शामिल कीजिए। इसमें जीवन को इधर नहीं लगाएंगे तो उधर तो लगेगा, किसी से पूछने की जरूरत नहीं है फिर कि हम किधर लगे हुए हैं, इधर नहीं लगे तो उधर लगे हुए हैं। आज बड़ा पावन दिन है, वृंदावन दास ठाकुर जी का आज डिस्पेरेंस्ड है और उनके बारे में बोला जाता है कि वेद व्यास जी ने श्रीमद भागवत की रचना की कृष्ण लीला करते हुए और वृंदावन दास ठाकुर जी ने श्री चैतन्य भागवत की रचना की चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं का अनुगमन करते। देखिए कहीं तो आप लगेंगे, या तो वृंदावन दास ठाकुर की तरफ प्रयास कीजिए, अपने जीवन को कहीं लगाइए, इनसे सीखिए। हमारे आचार्य जो हैं है? क्या एक बड़ा सुंदर भजन आता ना, भजूरे मन श्री नंद नंदन आभाय चरण अरविंद रे, दुर्लभ मानव जन्म सतसंग। हमें समस्या क्या कि हमारे जीवन की, कि हमें मालूम ही नहीं है कि ये जीवन बड़ा दुर्लभ है। हमने इस मनुष्य तन की दुर्लभता को समझा ही नहीं अभी तक। दुनिया के साथ है, दुनिया खड्डे में जा रही है, यार हम भी चले जाएंगे, क्या दिक्कत है। इस जीवन की दुर्लभता को हमने समझने का कभी प्रयास नहीं किया और परिणाम आपके सामने है। फिर अगले जन्म की तैयारी होने जा रही है, खाने पीने में बड़ा मन लगता है, कभी संजीदगी से जो सोचने का प्रयास कीजिए कितनी देर और खाएंगे आप, कितनी देर और खाएंगे आप। लेकिन कभी इतनी संजीदगी से अपने बारे में कभी सोचने का भी प्रयास नहीं। बैठे ना कथा में नींद आ जाती है और खूब नींद ले लेते हैं बैठे बैठे कथा में भी, और वही अभी अभी के अभी हर प्रसाद में जाएंगे सारी नींद उड़ जाएगी। क्यों? क्यों? खाने में मन लग जाता है, इसमें मन लगाना नहीं चाहते, इसमें मन नहीं लगाना चाहते, उधर मन लगा हुआ है। लेकिन कभी सोचने का प्रयास कीजिए कितनी देर और खाएंगे आप। भोगों को आप नहीं खा रहे, भोग आपको खा रहे हैं, समझिए इस बात को। आप भोगों को नहीं भोग रहे, भोग आपको भोगते चले। परीक्षित महाराज के पास 7 दिन का समय था और 7 दिन के बाद उसने शरीर छोड़ना था और उसे जैसे ही मालूम हुआ कि 7 दिन बाद मेरा शरीर छूटेगा, आके गंगा के किनारे बैठ गया, सवाल किया, हम परचामि संसिद्धिं योगी नाम परमं गुरु कार्य सस्य है, सर्वथा। लेकिन हमने कभी ये सवाल किया अपने आप से कि मैं इस संसार में आया हूं तो क्यों आया हूं, किस लिए आया हूं? क्या खाने पीने के लिए आया हूं? खाने पीने सोने के लिए आया हूं? कभी नहीं अपने जहन में ये सवाल उठता भाई मैं इस संसार में आया हूं तो क्यों आया हूं। ये बच्चे पाल लिए, बड़े किए, मार खाई बच्चों से, क्या इसीलिए आया? यही जीवन है। प्रभुपाद जी बोले ना, ये इस व्यक्ति का गृहमेथी परिवार है, मार भी खाता है और बाहर आके दुनिया को बता भी नहीं सकता। और देखिए जीवन की विडंबना मारे कि अंदर अपने पुत्रों से मार भी खाता है और बाहर आके बता नहीं सकता कि भाई मैं अंदर से मार खा के, हम बाहर आके तारीफ करते हैं अपने बच्चों की, मेरे बच्चे बड़े काबिल हैं। क्योंकि उसे मालूम है रोना कोई उसका सुनेगा नहीं, दो दिन सुनाएगा ना किसी को अपने दुख की बात, तो तीसरे दिन वही व्यक्ति जो सुनने वाला, दो दिन जिसने सुना, तीसरे दिन उसको दूर से देखते ही अपना रास्ता बदलेगा, यार इधर काम ही रोना है। वो क्यों नहीं सुनना चाहता? वो उसके पास अपने दुख कम है क्या, दूसरे के दुखों को कितने दिन सुने? कोठे चढ़ के देखा, कर कर बल दिया, लेकिन इसके बावजूद भी हम में से कोई भी अपना रास्ता बदलने के लिए तैयार नहीं है। कोई भी सीरियसली और सिंसियरली भगवान की तरफ चलने के लिए तैयार नहीं। कल मैं आया था वृंदावन में, कथा हुई, बहुत सुंदर कथा किया देवानंद प्रभु जी का। जैसे कथा समाप्त हुआ, प्रभु जी अपने आसन से उठे, नीचे बाहर क्यों चले, माता लोग, प्रभु लोग, वो आपस में क्या हाल है, कैसे हो जी है, भूल गए कि क्या कथा सुनी क्या नहीं, कोई डिस्कस करें, कोई बात करें, यार इस कथा सुन ना। वो ही जीवन, वो ही आपस में माता लोग भी लग गई आपस में जो बातें करने लगी, प्रभु लोग अपने बातें, हाथ में हाथ डाले, चलो भाई चलो खाना खाए, हो गई ना कथा, बस ठीक है, सुन लिया ना, अमल में नहीं लाना इस कथा को भाई, ये गलती हो जाएगी, भारी पड़ जाएगा। अमल में ले आए तो भारी पड़ जाएगी कथा। ये वास्तव में आपको जीवन मिला है, बड़ा दुर्लभ है, और ये आपके ऊपर बड़ी महती कृपा है कि आपके जीवन में प्रभुपाद जी जैसा संत भी आपके जीवन में आया हुआ। लेकिन एक बात समझ लीजिए कि प्रभुपाद जी जैसा संत आपके जीवन में, उसके बाद भी अगर आपका जन्म मरण का चक्कर समाप्त नहीं होता है तो समझ लीजिए, जानिए सुनिए हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे। कोई किसी प्रकार का डिस्कशन, डिस्कशन के लिए समय नहीं किसी के पास, क्योंकि प्रसादम का समय हो चुका है। इट इज नॉट ए मैटर ऑफ लव। हरे कृष्णा, शील प्रभात की। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कोई त्रुटि रह गई हो तो मैं माफी चाहता हूँ आपसे।